ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए किसानों की सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरबीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
हाल ही में सरकार ने किसानों के हित में कई अहम निर्णय लिए हैं। इनमें जहां एक तरफ खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को बढ़ाया गया है, वहीं बासमती चावल और प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य को घटाया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार को लेकर 14,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 परियोजनाओं को भी अपने मंत्रिमंडल के निर्णय में मंजूरी दी थी और आज हम इन अहम कदमों पर कार्यक्रम में बात करने वाले हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। हरवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है।
शुक्रिया
हरवीर जी। सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को 0% से 20% तक और जिसका कुल प्रभावी शुल्क 27.5% तक हो जाता है उसको बढ़ा दिया है, इस निर्णय का सोयाबीन और जो खासतौर पर हरे चने का उत्पादक किसान है उसको लेकर इसका क्या महत्व है और इस कदम से जो खासतौर पर रबी फसलों की बुआई है या सरसों की कीमतें हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है? और इसके अतिरिक्त हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जो एडिबल ऑयल्स हैं उसमें जो मूल शुल्क है उसको 32.5% तक जब बढ़ा दिया गया है तो इस निर्णय से सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली फसलों की मांग किस तरह से प्रभावित होगी और इससे किसानों को किस तरह का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आता है?
ये महत्वपूर्ण फैसले हैं और सरकार ने ये जो फैसले हैं वो किसानों के हितों को ध्यान में रखकर के लिए हैं। अगर आप खाद्य तेलों की बात करें तो उसमें जो बेसिक कस्टम ड्यूटी हम बोलते हैं उसको 20% बढ़ाने का फैसला लिया गया। उसके चलते ये नतीजा हुआ कि जो देश में खाद्य तेलों का आयात है वो सस्ता नहीं रहेगा, उसके दाम बढ़ जाएंगे। और क्योंकि अभी खरीफ की फसल का कटाई का सीजन शुरू होने वाला है जिसमें मूंगफली है, सोयाबीन है, मुख्य फसलें हैं, सो वो जो किसान है जब अपना उत्पाद बाजार में लाएंगे तो उनको उसका सही दाम मिल पाएगा। क्योंकि जो खाद्य तेल उद्योग है वो अपने किसानों से ये तिलहन खरीदने की तरफ अग्रसर होगा क्योंकि उनका इसलिए फायदा है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है और साथ में ये भी है कि जैसे आपने जिक्र किया कि रबी की फसलों का सीजन बुआई का शुरू हो जाएगा अभी अक्टूबर में और एक संकेत होता है किसानों को कि उनके रबी की जो फसलें वो बोएंगे उसमें उन्हें कहाँ फायदा होगा। अब उसमें जो तिलहन फसल है, जो सबसे बड़ी तिलहन फसल है ये हमारा जो सरसों है, उसके किसानों को भी संकेत है कि सरकार बाजार में सस्ते खाद्य तेलों का आयात नहीं होने देगी, इसलिए अगर वो सरसों की फसल की बुआई करते हैं तो वो उनके हित में रहेगा। तो ये खाद्य तेलों से जुड़ा जो फैसला है ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी था कि ज्यादा आयात होने से देश में खाद्य तेलों के दाम गिर गए थे, तो अगर दाम ज्यादा कम होंगे तो फिर घरेलू जो उद्योग है वो थोड़ा तेलन खरीदने से हिचकेगा। तो मेरे ख्याल से ये सही तौर पर डिसीजन लिया गया और इसके चलते जैसे आपने खुद जिक्र किया है कि जो सूरजमुखी तेल है उसके ऊपर जो ड्यूटी बढ़ने से अब वो 32.5% का उसके ऊपर अब सीमा शुल्क लगेगा और जो क्रूड सोयाबीन और ये क्रूड पाम तेल है, क्योंकि पाम ऑयल का काफी इम्पोर्ट हमारे यहाँ होता है, उसमें 0% सीमा शुल्क का उसको 20% कर दिया गया है। तो ये मेरे ख्याल से काफी बेहतर कदम है क्योंकि जो कच्चे तेल है उनके प्रभावी शुल्क 27.5% हो जाएगा और रिफाइंड के ऊपर ये 35% से ज्यादा हो जाएगा।
इसी तरह अगर हम बासमती चावल की बात करें तो सरकार ने इसके निर्यात को फायदा पहुंचाने के लिए भी एक अहम निर्णय लेते हुए न्यूनतम निर्यात मूल्य को हटा दिया है, तो किस तरह से इससे निर्यात और मांग में वृद्धि हो सकती है और कैसे इसका किसानों को लाभ होगा?
भारत बासमती का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हम सालाना करीब 50,000 करोड़ का बासमती चावल निर्यात करते हैं देश से। देश की जो कृषि अर्थव्यवस्था है उसके लिए बासमती की एक काफी बड़ी भूमिका है और अभी क्योंकि बासमती की फसल कुछ दिन में बाजार में आने लगेगी, ऐसे में निर्यातकों को निर्यात करने की सहूलियत देना किसानों के लिए फायदेमंद होगा। असल में पिछले साल सरकार ने बासमती के निर्यात के ऊपर न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू किया था $1200 प्रति टन का, बाद में उसको संतुलित करके $950 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य किया था। असल में उसके पीछे वजह यह थी कि काफी सारा निर्यात बासमती के नाम पर दूसरे चावल का हो रहा था, तो ये भी देखना था सरकार को उस वक्त चावलों के दाम बढ़ रहे थे कि बासमती के नाम पर दूसरा निर्यात ना हो, प्लस हमारे बासमती का जो एक दुनिया में जो इमेज है उसके ऊपर भी प्रतिकूल असर ना पड़े। तो जो एपिडा एक वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक संस्था है, वो बासमती के निर्यातकों को रजिस्ट्रेशन कम एलोकेशन सर्टिफिकेट जारी करती है। कोई भी निर्यातक को वो सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है। उसमें कहा गया था कि जो निर्यातक यहाँ आवेदन करेंगे उनका जो निर्यात मूल्य होगा वो इस दाम से कम नहीं होना चाहिए, $950 से। अब सरकार को लगा कि इसको हटाना चाहिए क्योंकि निर्यात में काफी प्रतिस्पर्धा है और पाकिस्तान हमारा एक बड़ा प्रतिस्पर्धी देश है बासमती चावल के निर्यात में, और एक तो उनकी मुद्रा काफी कमजोर है डॉलर के मुकाबले, और इसलिए वो उसका फायदा उठा रहे थे। और निर्यातकों की भी मांग थी हमारे देश के इसको खत्म किया जाए, और अभी नई फसल आने वाली है तो बासमती का जो धान है उसकी कीमतें कुछ कम हो गई थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि जो निर्यातक है वो यहाँ पर हमारे जो घरेलू किसान है उनको काफी बेहतर दाम देंगे, और हरियाणा जैसे राज्य में जो धान की कुल फसल है उसका करीब 56% जो है वो बासमती धान होता है, तो ये लाखों लाख किसानों के लिए इसका फायदा होगा ताकि उनको बासमती धान के बेहतर दाम मिल पाए और हमारा जो पारंपरिक निर्यात बाजार है वहाँ हमारी मजबूती बनी रहेगी। इसलिए बासमती का एमईपी खत्म करना एक बड़ी पहल है।
इसी तरह प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज पर जो न्यूनतम निर्यात मूल्य है उसको 40% से घटाकर 20 कर दिया गया है। इस निर्णय से आपको क्या लगता है कि जो प्याज उत्पादक किसान हैं उनको किस प्रकार से लाभ होगा, और प्याज के निर्यात में क्या आपको लगता है कि इससे संभावनाएं और लाभ बढ़ेंगे?
एशियाई देश जो हमारे हैं और मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहां पर भारत प्याज का एक बड़ा निर्यातक देश है, और पिछले दिनों हमारे देश में प्याज की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जो पिछले साल की फसल है उसको लेकर भी चैलेंज था, तो सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी। उसके बाद मई से थोड़ा पहले शायद अप्रैल में प्याज के निर्यात को तो अलाउ कर दिया गया था, अनुमति दे दी गई थी निर्यात की, लेकिन प्याज के ऊपर $550 प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया गया और 40% जो है वो निर्यात शुल्क लगाया गया। तो अभी के फैसले में दो चीजें की गई हैं, एक तो जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है इससे हम निर्यात शुल्क कहते हैं उसको घटा करके 20% कर दिया गया है, और जो न्यूनतम निर्यात मूल्य है उसकी शर्त को खत्म कर दिया गया है। और अभी क्योंकि खरीफ की फसल प्याज की आने वाली है, हालांकि प्याज की जो मुख्य फसल है वो रबी की फसल होती है, लेकिन अभी प्याज बाजार में आ जाएगा तो ऐसे में सरकार ने निर्यात के लिए रास्ता खोल दिया है जिससे कि किसानों के लिए दाम नीचे ना आए, और जो निर्यातक हैं और कुछ किसान संगठन भी निर्यात करते हैं वो निर्यात का फायदा उठाए।
अगर हम हाल ही के कुछ कैबिनेट डिसीजंस की बात करें तो सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए की 7 योजनाओं को मंजूरी दी थी, इसमें से एक अहम है डिजिटल कृषि मिशन। तो आप इस मिशन के बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे, कैसे इस मिशन से तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा और जो किसान है उनकी फसल उत्पादन की और प्रबंधन की क्षमता में इससे कैसे सुधार देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में?
ये डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत अभी पिछले दिनों कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया था जिसमें करीब 14,000 करोड़ रुपए के निवेश का एक लक्ष्य है जिसमें तय किया गया है। उसमें कई सारे उसके पहलू हैं एग्रीकल्चर के लिए, एक तो किसान रिस्क बनाने का एक उसमें है, फिर दूसरे ये है कि जो जमीनें हैं उनका डिजिटाइजेशन किया जाएगा, साथ में जो फसलों की कैसे उसमें इनपुट मटेरियल क्या इस्तेमाल हो रहा है, कैसे उसका विकास हो रहा है इसके ऊपर काम होगा, प्लस किसानों को सही समय पर सही सूचना देना मार्केट की भी और फसल उत्पादन की भी वो उसके तहत है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें जो एनिमल हस्बेंड्री का जो सेक्टर है उसके लिए भी बेहतर नस्ल सुधार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के ऊपर खर्च करने का प्रावधान है। तो और ये विलेज रजिस्ट्री उसमें बनेगी कि गांव की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ जमीन कैसी है, उसमें जमीन के जो प्रकार है, मिट्टी के जो उसके उर्वर तत्व है वो किस तरीके से है, जिस तरह की बेटर प्लानिंग की जा सकती है, या कभी कोई डिजास्टर आता है फ्लड या उस तरीके की चीजें होती हैं तो उस वक्त प्रभावी तरीके से उससे कैसे निपटा जा सकता है, क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है उसको भी एड्रेस करने का इसमें प्रावधान है, तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है।
इसी तरह से हम मिशन मौसम का अगर आपसे जिक्र करना चाहें, हाल ही में अभी बीते दिनों ही इसको लेकर सरकार ने एक अहम निर्णय लिया और इस मिशन को लेकर भी जो फंड है उसके आवंटन को मंजूरी दी, तो मिशन मौसम कैसे कृषि क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये अन्य क्षेत्रों के लिए भी लाभदायक है लेकिन खासतौर पर जो भारत में मौसम की निर्भरता कृषि पर बहुत है, तो कैसे ये एक अहम कदम साबित होने वाला है आने वाले समय में?
देखिए, मिशन मौसम में एक बड़ी बात ये है कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज निकल के आ रहा है सामने, उसके बारे में सटीक जानकारी हासिल करना और उस तरीके के मौसम के लिए मॉडल विकसित करना कि ताकि समय रहते सूचनाएं मिले और उसको कोई भी चैलेंज अगर आता है उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, ये जो पहलू उसमें मिशन मौसम में है। और इसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो भी उस तरीके का संसाधन हो सकता है टेक्नोलॉजी के, उन सब का इस्तेमाल करके सटीक जानकारी और सही कदम कैसे उठाए जा सकते हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए और लोगों को जागरूक रखने के लिए, और खासतौर से जो क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज है उसको हम कैसे एड्रेस करें, और कृषि के अलावा जो दूसरे क्षेत्र भी हैं वो मौसम की सही जानकारी लेकर के ऐसे फैसले ले सकते हैं और किस तरीके के बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं और अगर कोई रिस्क है उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, उसमें ये मिशन मौसम प्रभावी होने जा रहा
है। इसके अलावा जो अन्य योजनाओं को मंजूरी दी थी सरकार ने, जिसमें डेयरी और पशुपालन को लेकर फंड का आवंटन, फसलों की सुरक्षा और पोषण, कृषि को लेकर प्रबंधन में सुधार के संबंध में एक अहम निर्णय, और जितने भी ये पहले हैं, आपको क्या लगता है इससे कैसे जो भारत का पूरा एक कृषि का इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो सकता है, कैसे उसको लाभ पहुंचने की संभावना है अगर सरकार तमाम इन योजनाओं के जरिए कृषि क्षेत्र पर फोकस कर रही है?
देखिए, पिछले दिनों सरकार ने जो जलवायु अनुकूल 109 किस्में भी जारी की थी प्रधानमंत्री जी ने, ये भी उसमें एक महत्वपूर्ण कदम रहा। पीछे हाल फिलहाल के जो कदम है उसमें टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग कृषि में हो सकता है और उससे जो उत्पादकता है उसमें कैसे बढ़ोतरी हो, किसानों की आय कैसे बेहतर हो सकती है और हम अपनी कृषि को कैसे आधुनिक तकनीक का फायदा दे सकते हैं, ये उसमें उसका एक पक्ष है और ये लगातार इसको लेकर के कदम उठाए गए हैं। तो ये मैं देखता हूँ कि टेक्नोलॉजी और जो सुधार है वो कृषि में बाकी क्षेत्रों की तरह से नहीं हो पाए थे, लेकिन अभी जितने कदम कृषि में आ रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के हो या मैनेजमेंट को लेकर के हो, ये एग्रीटेक स्टार्टअप्स की बात हम करें या फंड्स की बात करें, तो एग्रीकल्चर एक बहुत ही एक्टिव क्षेत्र के रूप में इस वक्त हम सबके सामने है।
अंत में बागवानी को प्रोत्साहन को लेकर आपके क्या विचार हैं? ये क्षेत्र किस तरह से बहुत बड़ी क्षमता रखता है और भारत इससे कैसे एक लाभ कमा सकता है, क्योंकि सरकार ने बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने को लेकर भी बीते समय में कई अहम निर्णय लिए हैं?
बिल्कुल, देखिए बागवानी का अगर हम देखें जो हमारा हॉर्टिकल्चर पूरा समाहित करे उसके फल और सब्जियों को, उनका जो उत्पादन है वो अब हमारे खाद्यान्न उत्पादन को भी पार कर गया है और ये बागवानी के जो उत्पाद होते हैं वो उनका वैल्यू ज्यादा होती है, उनका दाम ज्यादा होता है। सो दूसरे बागवानी में जो क्वालिटी मटीरियल होता है जिसको हम प्लांट मटीरियल बोलते हैं, या बागवानी फसलों को होने वाले नुकसान या उनको जो रोग है या उस तरीके की चीजें और उसको कैसे रोकथाम करें या उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं और मार्केट्स कैसे क्रिएट करें, उनको कैसे मैपिंग करें, उनका दाम ज्यादा कैसे मिलेगा, उसके लिए एक अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है जिसमें हम स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि ये इनको हम जल्दी नष्ट होने वाले उत्पाद होते हैं, पेरिशेबल कमोडिटीज जिसे हम कहते हैं। तो उसमें ये जो कदम उठाए गए हैं बागवानी को लेकर के हॉर्टिकल्चर सेक्टर का जो प्रमोट करने के लिए फैसला लिया गया है, वो मुझे लगता है कि जो बड़ी आबादी का एक हिस्सा हमारे किसानों की बागवानी के ऊपर निर्भर करता है, उनकी आय का एक स्रोत को मजबूत करने की दिशा में ये फायदेमंद होगा।
हरवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप कार्यक्रम में जुड़े और इस हाल ही में जो किसानों के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, कई योजना को मंजूरी दी है अपने निर्णयों में, उस पर विस्तार से हमारे साथ बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे किसानों के सशक्तिकरण के लिए सरकार की प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।